ज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण कोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर नवदीप धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी देवी की कलयुग पवन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः So I will read purport slokas translation and purport in English and then in class in Hindi. So today we are reading from Srimad Bhagavatam Canto 5 Chapter 1 Text number 34 and 35. 34 doesn't have a purport so I will just read the Sanskrit and translation. दुहितरं चोर्जवसत् चोर्जस्वतिं नामोशनसि प्रायच्छद् यस्याम् आसीत् देवयानी नाम काव्यसुता। ट्रांसलेशन: किंग प्रियव्रत देन गेव हिज डॉटर ऊर्जस्वती इन मैरिज टू शुक्राचार्य हु बिगॉट इन हर अ डॉटर नेम्ड देवयानी। देन 35 न एवं विदह पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तद अंघ्रिरजसा जित षड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृद् आददीत यन् नामधेयम् अधुना स जहाति बंधम। नैवं विदः पुरुषकार विरुक्रमस्य पुंसां तद् अंघ्रिरजसा जित षड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृद् आददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बंधम। नैवं विदः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदंघ्रिरजसा जित षड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृद् आददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बंधम। नैवं विदः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदंघ्रिरजसा जित षड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स जहाति बंधम। नैवं विदः पुरुषकारोरुक्रमस्य नैवं विदः पुरुषकारोरुक्रमस्य पुंसां तदंघ्रिरजसा जित षड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदाददीत word to word meaning translation and purport by his divine grace AC Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki na not evam vidaha like that purushakarah personal influence urukramasya of the supreme personality of Godhead pumsam of the devotees tad angri of his lotus feet rajasa by the dust jita shad gunanam who have conquered the influence of the six kinds of material whips chitram wonderful vidura vigatah the fifth grade person or the untouchable sakrit only once आददीत इफ ही अटर्स यत हुज नामधेयम होली नेम अधुना इमीडिएटली सह ही जहाति गिव्स अप बंधम मटेरियल बॉन्डेज. ट्रांसलेशन. माय डियर किंग, अ डिवोटी हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ द डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड कैन ट्रांसेंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिक्स मटेरियल विप्स, नेमली हंगर, थर्स्ट, लैमेंटेशन, इल्यूजन, ओल्ड एज एंड डेथ, एंड ही कैन कॉन्कर द माइंड एंड फाइव सेंसेस. However, this is not very wonderful for a pure devotee of the Lord, because even a person beyond the jurisdiction of the four castes, in other words, an untouchable, is immediately relieved of bondage to material existence if he utters the holy name of the Lord even once. Purport. Shukdev Goswami was speaking to Maharaj Parikshit about the activities of King Priyavrat, and since the king might have had doubts about these wonderful uncommon activities, Shukdev Goswami reassured him. "My dear king," he said, "don't be doubtful about the wonderful activities of Priyavrat. For a devotee of the Supreme Personality of Godhead, everything is possible, because the Lord is also known as Urukrama. Urukrama is a name of Lord Vamandev, who performed the wonderful act of occupying the three worlds with three footsteps. Lord Vamandev requested three paces of land from Maharaj Bali, and when Maharaj Bali agreed to grant them, the Lord immediately covered the entire world with two footsteps. And for his third step, he placed his foot upon Bali Maharaja's head. Shri Jaidev Goswami says, Chalayasi vikramane balim adbhuta vaman padanakhani rajanita janapavan keshavadhrita vaman rupa jay jagadish hare जय जगदीश हरे जय जग. All glories to Lord Keshav, who assumed the form of a dwarf. O Lord of the universe, who takes away everything inauspicious for the devotees. O wonderful Vamandev, you tricked the great demon Bali Maharaj by your steps. The water that touched the nails of your lotus feet, when you pierced through the covering of the universe, purifies all living entities in the form of the river Ganges. Since the Supreme Lord is all-powerful, he can do things that seem wonderful for a common man. Similarly, a devotee who has taken shelter at the lotus feet of the Lord can also do wonderful things, unimaginable to a common man, by the grace of the dust of those lotus feet. Chaitanya Mahaprabhu therefore teaches us to take shelter of the Lord's lotus feet. Ai nanda tanuja kinkaram patitam mam vishame bhavam budho kripaya tava pada pankaja स्थिता धूलि सदृशं विचिन्तय. ओ सन ऑफ नंद महाराज, आई एम योर इटर्नल सर्वेंट, येट समहाउ और अदर आई हैव फॉलन इन टू द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ. प्लीज पिक मी अप फ्रॉम दिस ओशन ऑफ डेथ एंड प्लेस मी एज वन ऑफ द एटम्स ऑफ योर लोटस फीट. लॉर्ड चैतन्य टीचर्स अस टू कम in touch with the dust of the Lord's lotus feet, for then there will undoubtedly be all success. Because of the material body, every living entity in material existence is always disturbed by shadgun, six whips, hunger, thirst, lamentation, illusion, invalidity and death. Furthermore, another shatgun are the mind and five sense organs. Not to speak of a sanctified devotee, even a chandal, an outcast who is untouchable, is immediately freed from material bondage if he utters the holy name of the Lord even once. Sometimes caste Brahmanas argue that unless one changes his body, he cannot be accepted as a Brahman. For since the present body is obtained as a result of past actions, one who has in the past acted as a Brahman takes birth in a Brahman family. Therefore, they contend, without such a Brahmanical body, one cannot be accepted as a Brahman. Herein it is said, however, that even Vidura Vigataha, a chandal, a fifth class untouchable, is freed if he utters the holy name even once. Being freed means that he immediately changes his body. Sanatan Goswami confirms this. Yatha kanchanatam yati kamsyam rasa vidhanataha tatha diksha vidhanena dvijatvam jayate nunam. When a person, even though a chandal, is initiated by a pure devotee into chanting the holy name of the Lord, his body changes as he follows the instructions of the spiritual master. Although one cannot see how his body has changed, we must accept, on the grounds of the authoritative statements of the Shastras, that he changes his body. This is to be understood without arguments. This verse clearly says, Sajahati Bandham, he gives up his material bondage. The body is a symbolic representation of the material bondage according to one's karma. Although sometimes we cannot see the gross body changing, chanting the holy name of the Supreme Lord immediately changes the subtle body, and because the subtle body changes, the living entity is immediately freed from material bondage. After all, changes of the gross body are conducted by the subtle body. After the destruction of the gross body, the subtle body takes the living entity from his present gross body to another. In the subtle body, the mind is predominant, and therefore, if one's mind is always absorbed in remembering the activities or the lotus feet of the Lord, he is to be understood to have already changed his present body and become purified. Therefore, it is irrefutable that a chandal or even fallen or low-born person can become a Brahman simply by the method of bona fide initiation. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadati Sva Vandeham Shri Guruho Shri Yutaha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Saghrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpataru Bhyascha Krupa Sindhu Bhyayevacha Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaurabhakta Vrinda हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल असेंबल्ड वैष्णवज सो दैट आई कैन रेंडर दिस सर्विस एंड मे द लॉर्ड बी प्लीज्ड बाय दिस सर्विस। तो ये बोर्ड इधर ही रख सकते, जरा श्लोक दिखना चाहिए जिस श्लोक के ऊपर चर्चा हो रही है। तो ये पंचम स्कंध का पहला अध्याय है। तो इसमें परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। तो ये पंचम स्कंध में करीबन 26 अध्याय है और उसमें से 15 अध्याय स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत महाराज के जो वंशावली है उसका वर्णन है। तो परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था कि प्रियव्रत जो कि वैराग्य जीवन में थे लेकिन फिर भी वो गृहस्थ कैसे बने, तो उसका उत्तर देते हुए वर्णन आता है कि प्रियव्रत को वैराग्य में अगले स्टेप में दीक्षा देने के लिए नारद मुनि तैयार थे और दूसरी तरफ स्वयंभू मनु श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की श्री श्री गौर निताय की, तो एक तरफ नारद मुनि अगला दीक्षा देने के लिए तैयार थे और दूसरी तरफ स्वयंभू मनु अपना पूरा ये शासन का जिम्मेदारी प्रशासन का जिम्मेदारी उनके ऊपर उनके पास देने के लिए तैयार थे। तो दोनों के बीच में ये प्रसंग चल रहा था और उसी समय ब्रह्मा जी जो कि ये तीन महाजन हैं नारद मुनि स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी हमेशा ये विश्व का प्रशासन कैसे अच्छे ढंग से चले, जो मैनेजमेंट में रहते वो हमेशा सोचते रहते कि अच्छे तरह से सभी प्रॉपर क्वालिफाइड पर्संस पोस्ट पर होने चाहिए। इनफैक्ट बाहर भी अगर क्वालिफाइड पर्सन मिलता नहीं तो वो पोस्ट वैकेंट रखी जाती है, जब तक वो क्वालिफाइड पर्सन नहीं मिलता तब तक वो उस डिपार्टमेंट चालू मत करो। एक तो ऐसा हुआ था कि एक वेल्दी व्यक्ति उसकी बड़ी कंपनी थी तो वो कंपनी में उसको चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करना था, तो उसने उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट वगैरह की और बहुत सारे कैंडिडेट्स या बायोडाटा आए और फिर इंटरव्यू लेने के लिए कभी कभी वो स्वयं ही वेश बदल कर जाता था। तो एक कैंडिडेट का उसने बायोडाटा बहुत अच्छा है देखा और फिर उसको एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए स्वयं गया, वो स्वयं कार ड्राइविंग करके एयरपोर्ट में गया और फिर आते आते 30-40 मिनट्स उसका उसके साथ बातचीत की और ऐसे कुछ प्रश्न पूछे कि ये व्यक्ति का एटीट्यूड क्या है या इसका सब इंफॉर्मेशन उसने निकाला और फिर एक्चुअल जो इंटरव्यू था वो 15 मिनट में ख़त्म किया और दिस पर्सन इज नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट बिकॉज उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, बायोडाटा बहुत अच्छा था लेकिन एटीट्यूड ठीक नहीं है तो डिस्क्वालिफाइड है। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी भी ये प्रशासन ये पूरे यूनिवर्स में सही व्यक्ति सही पोस्ट पर सही जगह पर हो इसके बारे में चिंता करते, और उस समय प्रियव्रत अकेले ही ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके पास ये अगला राजा बनने के लिए जो गुण चाहिए, क्वालिटी चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, सब सटल बॉडी ग्रॉस बॉडी सब जो एस्पेक्ट चाहिए वो प्रियव्रत में ही मौजूद थे। तो ऐसा व्यक्ति अगर नहीं बोलेगा कि मैं पोस्ट नहीं स्वीकार करूंगा तो ब्रह्मा जी को बहुत टेंशन हो जाएगा। तो इस प्रसंग में ये 4-5 फैक्टर्स हैं कि जिसके कारण प्रियव्रत ने ये स्वीकारा, स्वयं ब्रह्मा जी उधर आए वो अकेले ही क्वालिफाइड थे उस समय और प्रियव्रत ने अपना निजी जो इच्छा था वो बाजू में रखा, पूरे प्रजा का हित ब्रह्मा जी की इच्छा और भगवान की इच्छा ये सब ध्यान में रखते हुए उन्होंने अगला राजा बनने का निर्णय लिया। लेकिन अगर इसमें से ये फैक्टर्स पूरे नहीं होते तो और भी एक केस है दूसरा कि जिसमें ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं हुआ चार कुमारों के द्वारा, तो उधर के कंडीशंस कुछ अलग है, वो आगे प्रसंग आएगा। तो हालांकि कुमारों ने आज्ञा का पालन नहीं किया लेकिन फिर भी वो आगे जाके महाजन बने, तो शास्त्र में से दोनों उदाहरण है। तो सब परिस्थिति ध्यान में रखते हुए फिर हमको लेसन ड्रॉ करने चाहिए, नहीं तो इन जनरल केवल एक ही मुद्दा पकड़ेंगे तो फिर जरा गलत कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। तो आगे ये संवाद आता है कि ब्रह्मा जी स्वयं उधर आते और फिर करीबन 12-13 श्लोकों में वो समझाते हैं बहुत उसको, माय डियर प्रियव्रत, एकदम प्यार से एकदम अच्छे ढंग से समझाते हैं। तो सभी लोगों को, हम सभी को भगवान की जो इच्छा है, भगवान के निर्देश है, उसमें हम बंधे हुए हैं, तो इसलिए हमको ये जिम्मेदारी या आपको ये जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए। तो अगर आपको डर है कि गृहस्थ आश्रम में आकर तुम्हारा पराभव हो जाएगा, तुम्हारे जीवात्मा या आत्मा के स्तर पर तुम कार्य नहीं कर सकते, तो ये कार्य न कर सकना यही पराभव है, स्वरूप के अनुसार कार्य न करना यही पराभव का अगर डर है, तो तुम समझ लो कि जो व्यक्ति प्रमत्त है, पागल है, वो व्यक्ति अगर ऐसा वैराग्य का जीवन लेकर वन में भी जाता है लेकिन अगर प्रमत्त है, उसकी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, तो वो उधर जाकर भी हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, विचलित रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को दुर्ग का आश्रय लेना चाहिए। तो जैसे शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना हो तो पहले जरा दुर्ग का आश्रय लो और उधर से कुछ तोफ चलाओ या पत्थर फेंको या कुछ तो करो और ये शत्रु को परास्त करो, और शत्रु परास्त होने के बाद बाहर आकर फिर स्वच्छंद रूप से घूमो। तो ये तो सामान्य व्यक्ति का एक तरीका है। ये छह जो शत्रु है, तो पांच इंद्रिय और मन, तो इनको परास्त करने का ये सामान्य तरीका है, लेकिन तुम्हारी परिस्थिति अलग है। तो ये बात ब्रह्मा जी समझाते हैं श्लोक नंबर 19 में, त्वम तु, तो आप तो, त्वम तु अब्ज नाभ अंघ्रि सरोज कोश दुर्गाश्रितः, तो आप अब्ज नाभ अंघ्रि सरोज कोश, तो ये कोश शब्द सुनकर एक अर्थ प्रभुपाद ने दिया कि वो भगवान के चरण कमल के जो स्टेम है उसमें दुर्गाश्रित, वही तुम्हारे आश्रय है। या दूसरा अर्थ, कोश जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, तो इधर जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसके लिए अब्ज नाभ अंघ्रि सरोज कोश, तो तुम्हारे लिए ये छह जो निर्जित षट सपत्नः, तो पहले ही तुमने ये षट सपत्नः कोवाइब्स, तो इनको परास्त किया है, तो तुम्हें इतना डर नहीं है। तो ब्रह्मा जी की ये सब बात सुनकर फिर प्रियव्रत जो राजकुमार थे वो महाराज का पद स्वीकारते हैं, और फिर आगे जाकर वर्णन आता है कि उनकी शादी हो जाती है बरिष्मती से। तो बरिष्मती से 10 पुत्र प्राप्त होते हैं और उसमें से 3 वो वैराग्य का जीवन स्वीकारते हैं, और फिर जो बचे हुए 7 उनको प्रियव्रत महाराज ये सूर्य का जो कमी है, सूर्य की कमी की, जब वो मेरु पर्वत के सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करता है तो कुछ भाग में अंधेरा रहता है, कुछ भाग में उजाला रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो उन्होंने, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि ये सूर्य ऐसा घूमता है कि कुछ पार्ट में अंधेरा है। तो ये उनको जो बात अच्छी नहीं लगी वो ठीक करने के लिए, उसको सुधारने के लिए उन्होंने स्वयं अपना एक रथ बनाया, और वो रथ सूर्य के तेज के समान ही था, और वो रथ सूर्य के पीछे पीछे चल रहा था, और जहां पर अंधेरा था वहां पर प्रकाश हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध गए प्रियव्रत महाराज, जो नेचुरल लॉज है उसके विरुद्ध गए। भक्त तो सभी भगवान के नियम या प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है, लेकिन यहाँ पर जरा अलग हो गया। लेकिन ये अलग होने के बावजूद भी प्रजा को डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, प्रजा तो प्रसन्न हो गई। तो एक टीका में यही वर्णन आता है कि प्रजा को आनंद प्रदान करने के लिए प्रियव्रत महाराज ने ऐसा किया। और दूसरे तरीके से देखेंगे तो भगवान को प्रियव्रत महाराज ने अपना निजी इच्छा बाजू में रखकर प्रसन्न किया, और भगवान भी अभी प्रियव्रत महाराज को प्रसन्न करने के लिए वो प्राकृतिक नियम थोड़े बहुत चेंज भी हुए तो भी चलेगा, लेकिन मेरा भक्त प्रसन्न होना चाहिए। तो ये प्लीजिंग कॉम्पिटिशन, प्रियव्रत महाराज ने प्रसन्न किया भगवान को और भगवान भी उनको प्रसन्न कर रहे हैं। तो कोई भी प्रशासक रहता है, विशेष करके राजा का पद रहता है, उसके पास ये तीन गुण होने चाहिए। तो तीन गुण कौन से? एक धर्म पालन, दूसरा विषय भोग और तीसरा प्रभाव। तो उनका धर्म पालन करने का जो क्षमता था तो वो ऐसी थी कि उनके धनुष को जो डोरी है या प्रत्यंचा है वो चढ़ाते समय या चढ़ाने के बाद उसका सिर्फ टंकार से ही धर्म प्रतिपक्ष होने वाले, ये वर्णाश्रम के विरुद्ध व्यवहार करने वाले सभी लोग बिना युद्ध किए ही परास्त हो जाते थे। तो ये उनका धर्म पालन करने का क्षमता था। और दूसरा विषय भोग, तो इसके बारे में भी वर्णन पीछे आया है कि प्रियव्रत महाराज ने भरिष्मति के साथ बहुत भोग विलास किया, लेकिन ये करने के बाद भी उनका प्रभाव जो था, उनकी जो शक्ति थी वो कम नहीं हुई। जनरली राजा लोग जब विषय भोग में लिप्त हो जाते तो उनका ये पावर चला जाता है, इन्फ्लुएंस टू इन्फ्लुएंस ओवर द सिटीजन्स एंड इन्फ्लुएंस टू शो सम अनकॉमन एक्टिविटी या सुपर ह्यूमन एक्टिविटी, ये दिखाने का एबिलिटी उनका चला जाता है। लेकिन प्रियव्रत महाराज के केस में ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने ऐसा रथ बनाया कि ज्योतिर्मयेन रथेन और रजनीम अपि दिनम करिष्यामी, रात्रि को भी मैं दिन बना दूंगा। तो बाकी सब हीरो बोलते हैं ऐसा, लेकिन यहां पर एक्चुअली प्रियव्रत महाराज ने करके दिखाई है। तो उन्होंने सप्तकृतः तरनीम अनुपरि अक्रामत, सात बार प्रदक्षिणा की सूर्य के पीछे पीछे, और अलग अलग साइज के ओशंस और आइलैंड्स बनाए। तो वो एक ही साइज का रथ नहीं था, तो अलग अलग उसका रिम का डायमीटर या विड्थ अलग अलग था, और वो अलग 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 डायमीटर में घूम रहा था या रेडियस में घूम रहा था, एक ही रेडियस में नहीं घूम रहा था। तो अलग अलग साइज का रथ, अलग अलग रेडियस का रथ घूमने के कारण ये सात ओशन बने, और ये सात ओशंस अलग अलग लिक्विड के हैं। तो एक्चुअली ये सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है समझना, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें समझने के पहले हमारे खुद के शरीर में क्या हो रहा है वही व्यक्ति भूल जाता है। उसके नाखून कैसे बढ़ते हैं क्या उसको पता है? उसके बाल कैसे बढ़ते हैं, सर के सब बाल कब सफ़ेद कब होते हैं, या गले के नीचे अन्न जाने के बाद उसका डाइजेशन कैसे होता है, कितने फीट अन्न आगे बढ़ता है, खुद के शरीर के बारे में पता नहीं है। और जो प्रियव्रत महाराज जैसे शुद्ध भक्त है उनके का उन्होंने क्या क्या किया वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत अनरीजनेबल है। तो भगवान की भक्त भगवान जैसा ही कार्य कर सकते हैं भगवान की कृपा से। तो ये मुद्दा इधर आ रहा है। तो श्लोक नंबर 34 में वर्णन आता है कि प्रियव्रत महाराज की जो अन्य पत्नी थी, उसके पहले एक्चुअली अन्य पत्नी से तीन पुत्र प्राप्त हुए, रैवत, तमस और उत्तम। तो ये आगे जाकर तीसरे, चौथे और पांचवे मनु बन जाते हैं। स्वयंभू मनु पहले मनु है, दूसरे मनु स्वारोचिष मनु, और थर्ड फिर उत्तम, तमस और रैवत। तो प्रियव्रत महाराज अगर विवाह नहीं करते तो ऐसे आगे मनु बनने वाले लोग निर्माण नहीं होते। तो ये जो फैमिली लीनिएज है या जो नस्ल कहते हैं हिंदी में, पर्टिकुलर प्रजाति, उसको मेंटेन करने के लिए आज भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं हर क्षेत्र में। पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रेन्स, पर्टिकुलर टाइप ऑफ काऊ, काऊ की ब्रीड, पर्टिकुलर टाइप ऑफ टमाटो, हर एक जाति में देखेंगे तो वो प्रजाति नष्ट न हो इसके लिए उसके सीमन स्टोर करते हैं और उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। तो बाकी क्षेत्र में ये लागू है, लेकिन मानव जाति में भी ऐसा हो सकता है, ऐसी नस्ल, ऐसा क्वालिफाइड सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी क्वालिफाइड जनरेशन ऐसी बन सकती है। ये अभी तक क्लिक नहीं हो रहा है जो बड़े बड़े साइंटिस्ट या प्रशासक है कि ऐसी नस्ल भी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये तीनों पुत्र दूसरे पत्नी से जो थे वो आगे जाकर मनु बने, और जो सात पुत्र थे उनको ये सातों द्वीपों का अधिपति बनाया। और फिर उनकी जो पुत्री थी तो उसके बारे में यहां पर वर्णन आ रहा है कि ऊर्जस्वतिम दुहितरम च उषनसे, तो उषनसे यानी कि शुक्राचार्य को ये ऊर्जस्वती ब्याह में या मैरिज में दी गई। प्रायच्छद यस्याम देव यानी नाम काव्यसुता, और इसी से देव यानी नाम की काव्यसुता यानी कि ये शुक्राचार्य की पुत्री निर्माण हुई, और ये देवयानी का विवाह आगे जाके ययाति से हुआ, शर्मिष्ठा और देवयानी। तो ये दोनों से पांच पुत्र हुए, और उसमें से यदु, पुरु, द्रुहियु, तुर्वसु, ये पांच पुत्र हुए। और फिर ये 35 नंबर का श्लोक। तो ये जो प्रभाव है, प्रियव्रत महाराज ने सूर्य के पीछे अपना रथ घुमाया, वो एक ही पहिए का रथ था, दो पहिए वाला नहीं था। जैसे सूर्य का अपना भी रथ एक पहिए का ही है, वन व्हील। तो ऐसा प्रभाव उन्होंने दिखाया। तो ये सब एवं ये शब्द जो है श्लोक में, ये किसको रेफर करता है? उन्होंने सात समुद्रों का निर्माण करना, सूर्य के पीछे जाना, रात्रि को दिन में कन्वर्ट करना, ये सब उनके कार्य है। एवं विध पुरुषकार, पुरुषकार यानी कि प्रभाव या पौरुषत्व, उनका जो ये पौरुषत्व है, ये उरुक्रमस्य जित षड गुणानाम पुंसाम तद अंघ्री रजसा चित्रम न। तो प्रभुपाद उरुक्रम ये शब्द ले रहे हैं। तो उरुक्रम की जो तद अंघ्री रजसा, भगवान उरुक्रम के चरण कमलों की रज के प्रभाव से जिन्होंने षड गुणानाम जित, जो छह गुण है, तो रूपाद उसके दो अर्थ देते हैं। षड गुण, एक तो ये हंगर, थर्स्ट, लैमेंटेशन, इल्यूजन, जरा एंड मरण, और दूसरा मन और ये पांच इंद्रिया, इन दोनों को जो जीतता है। तो ऐसा पुंसाम, तो इस प्रकार का पौरुषत्व या प्रभाव दिखाना, ये वंडरफुल, चित्रम यानी कि सरप्राइजिंग या वंडरफुल नहीं है, चित्रम न, क्योंकि आगे श्लोक में बताया जा रहा है कि सह और विदुर विगत, तो ये दोनों शब्द साथ में हैं। तो विदुर विगत विशेषेन दूर इति विदुर, या विप्राद अति दूर इति विदुर, तो ब्राह्मण के स्तर से बहुत दूर जो है, या ये वर्णाश्रम सिस्टम से जो बहुत दूर है, विदुर विगत, तो ऐसा व्यक्ति सकृत एक बार भी यन नाम धेयम आददीत, इनके नामों का उच्चारण आददीत करता है, तो सह जहाति वो तोड़ देता है। जैसे प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताम, तो इधर सह जहाति, तो वो क्या तोड़ देता है? सह बंधम जहाति, तो कदा जहाति, अधुना, अभी, उसी समय वो ही ब्रेक्स दिस बंधम। तो प्रभुपाद ने उरुक्रमस्य ये शब्द पहले लिया है, उसका विश्लेषण दिया है, और फिर आगे भगवान के भक्त भी भगवान की जैसा एकदम सुपर ह्यूमन या वंडरफुल कार्य कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में भी दिखाई देते हैं कि जैसे अगस्त्य मुनि ने सागर को ही निगल लिया, पानी पूरा पी लिया, तो ये सामान्य व्यक्ति को समझना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान अपने ऐसे कुछ भक्तों को ये विशेष क्षमता प्रदान कर सकते हैं, इफ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लीजिंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। या दूसरा, जानहू मुनि ने जब भगीरथ महाराज ने स्वर्ग लोक से गंगा को नीचे लाया, तब जानहू मुनि ने पूरे गंगा को पानी ही पी लिया, क्योंकि उनकी जो कुटिया थी वो बह गई पानी में, तो गुस्से में आकर उन्होंने पूरे गंगा का पानी ही पी लिया। या ध्रुव महाराज ने भी ऐसी तपस्या की कि सभी जो लोग थे उनको सांस लेने में ही दिक्कत हो गई, उनका सांस रुक गई या घुटन सा महसूस हो गया उनको। या प्रभुपाद के जीवन में भी हम देख सकते कि इतने कम समय में इतने सारे लोगों को अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो मे बी 8 to 10,000 पीपल डेडिकेटेड देयर लाइव्स। अभी हमको 8-10 लोग हर साल लाना बहुत मुश्किल जा रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने 8-10 हजार लोगों को बिना ज्यादा कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट रखते हुए प्रेरित किया। तो ये अति मानवीय शक्ति है। तो भगवान अपनी शक्ति उनके शुद्ध भक्तों में ऐसे दे सकते, तो इस ढंग से उनके ये प्रभाव को समझना चाहिए। और इधर जो सकृद आददित, एक बार भी, तो उसका विश्लेषण करते वक्त प्रभुपाद बंधम ये शब्द को लेते हैं। तो बंधम, ये एक्चुअली श्लोक में केवल बंधम है, लेकिन एक अन्य टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि नामोच्चारण क्षण एव बंधम / तन्वम / तत्वम इति त्रय एव स्वामी सम्मताः पाठाः। तो बंधम जहाति, तन्वम जहाति, तत्वम जहाति, तो तीन अर्थ देते हैं। तो बंधम जहाति, ये मटेरियल बॉन्डेज को तोड़ देता है वो, और तन्वम यानी कि तनु जहाति। तो प्रभुपाद जी जो शरीर छोड़ने की बात लिख रहे हैं तो वो इसी से संबंधित है, वो अपना शरीर त्याग देता है। तो वो इधर विश्लेषण भी किया है कि वो अपना स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों को त्यागता है या केवल एक को त्यागता है। तो 100% सूक्ष्म शरीर को वो त्यागता ही है। तो आप भी याद कर सकते हैं आपका अनुभव, जब आप कीर्तन में एकदम तल्लीन हुए, जब शुरुआत में संस्था में आ गए, पहला कीर्तन सुना, या बाद में कभी इतना कीर्तन अच्छा लगा कि उसमें आप इतने तल्लीन हो गए, मग्न हो गए कि आपने अपना जो सूक्ष्म शरीर है वो टेम्पररीली अधूना उस क्षण के लिए, उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आपने त्याग दिया है, ये सबको अनुभव हुआ है, सही है। तो ये जो बात श्लोक में कही है अधूना, वो हम सब ने अनुभव भी की है। और रही बात ये स्थूल शरीर, ये भी एक्चुअली परिवर्तित हो जाता है। तो हालांकि एक्सटर्नली सेम दिखे, लेकिन ये शरीर से किए हुए कार्य एकदम बदल जाते। तो इसका और भी एक श्लोक है इसी प्रकार का, कि जो तीसरे स्कंध में आता है, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनाद यत् प्रवहणाद यत् स्मरणाद अपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ति भगवन्नु दर्शनात्। तो अगर क्वचित, इधर भी यहां पर सकृत जैसा ही शब्द है, तो अगर एक बार भी व्यक्ति भगवान का नाम श्रवण कीर्तन या उनका वर्णन स्मरण करता है, तो वो सवनाय कल्पते, वो बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए योग क्वालिफाइड हो जाता है। तो इसका आदर्श उदाहरण है वाल्मीकि ऋषि, वो उनके हंटर के या शिकारी के रूप शरीर में इतने पाप से भरे हुए थे कि उनको उनका भगवान का नाम का उच्चारण भी ठीक नहीं हो रहा था, तो उनकी टंग चाहते हुए भी वैसे मुंह नहीं हो रही थी। लेकिन बाद में वो आगे जाकर इतने पंडित बने कि उन्होंने 24,000 श्लोक लिखे, और उन्होंने अनुष्टुप छंद का निर्माण उनके मुख से हुआ, मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम शाश्वती समहा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो ये 20,00,000 साल पहले रामायण कब हुआ उसका जरा ट्रेस करेंगे। तो पहली बार ये जगत में अनुष्टुप छंद कैसे आया, तो ये वाल्मीकि ऋषि के शोक को उन्होंने श्लोक के रूप में प्रस्तुत किया और फिर ये पूरे रामायण का निर्माण हुआ। तो जो व्यक्ति अपने प्रेजेंट शरीर से भगवान का नाम भी उच्चारण नहीं कर पा रहा था, वो आगे जाके उन्होंने 24,000 श्लोकों की रचना की। तो हमारे भक्तिमय जीवन में भी अगर हम प्रगति कर रहे हैं क्या नहीं, तो एक पैरामीटर ये भी है कि हमारा उच्चारण शुद्ध होते जा रहा है, एटलीस्ट बेटर होते जा रहा है, एकदम 100% तो नहीं। तो ये स्थूल शरीर भी बदल रहा है। तो बंधम जहाती, तो ये बंधन के कारण ही हम हमारे लिए जो अच्छी चीज है वो चाहते हुए भी कर नहीं पाते। बंधन का अर्थ एक ये भी है कि कुछ चीज हमें इंटेलेक्चुअली पता है कि ये मेरे लिए अच्छी है, लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि जैसे कि कोई पीछे से हमको हमारा कुर्ता खींच के रखा है और आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, दिख रहा है वो हाँ मुझे करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते हम। लेकिन भगवान के चरण कमल या भगवान का ये दो चीजें हैं, एक बार भी नाम लेना और भगवान के चरण कमलों का जो रज है उसका आश्रय लेना। तो पहले स्टेप से ही ये बंधम जहाती संभव है। तो ये सकृत, ये शब्द अन्य भी श्लोकों में आता है, सकृत एव प्रपन्नोयम् तवास्मि इति च याचते अभयम् सर्वदा तस्मै ददाति एतद् व्रतम् मम। एक बार भी सकृत एव प्रपन्नोयस्, एक बार भी जो शरणागत हो जाता है और क्या कहता है, अहम तव अस्मि, मैं आपका हूं हे भगवान, इति च याचते, तो उसको सर्वदा अभयम् ददाति, मैं हमेशा भय रहित बना देता हूं, एतद् व्रतम् मम। या शंकराचार्य अपने मोह मुद्गर स्तोत्र में भी लिखते हैं, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कनिका पीता सकृत अपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तेन यमेन न चर्चा। तो भगवद गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन करता है, थोड़ा सा गंगा जल लेता है, या सकृत अपि येन मुरारी समर्चा, भगवान मुरारी के बारे में एक बार भी चर्चा करता है, बाकी विषयों की बहुत चर्चा होती है लेकिन भगवान मुरारी की ही चर्चा नहीं होती। तो क्रियते तेन, ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, यमेन न चर्चा, यम के द्वारा उसकी केस डिस्कस नहीं होगी, वो डायरेक्टली भगवान के धाम जाएगा। तो यहां पर जो एक बार भी भगवान का नाम लेना, इसमें क्वालिटी है, नहीं तो हम केवल कंपटीशन करते रहते टाइम के साथ, मेरी माला कितने टाइम में खत्म हो रही है, 2 घंटे में 16 माला हो रही क्या नहीं, 2.5 घंटे में हो रही क्या नहीं। तो दिस इज नॉट अटेंटिव चैंटिंग, अटेंशन में व्यक्ति टाइम को भूल जाता है, कितना समय गया उसको पता ही नहीं चला, पढ़ते पढ़ते इतना तल्लीन हो गया कि समय कैसे बीता उसको समझ नहीं पाया वो। तो ये वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ही शुड नॉट बी वरीड टू मच अबाउट टाइम। तो आखिरी एक श्लोक बताता हूं और फिर हम रुकते हैं। तो प्रभुपाद का मैं एक लेक्चर सुन रहा था कि ये खुद को भूलना और आध्यात्मिक स्तर पर आना, इसके लिए वो कनेक्शन बता रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक का विश्लेषण देते हुए प्रभुपाद कह रहे थे कि वी आर नॉट द बॉडी बट वी आर इन द बॉडी, सो हाउ टू यूज दिस बॉडी सो दैट वी कैन रियलाइज दैट वी आर नॉट द बॉडी। तो टू डू दिस, दिस श्लोका should be applied in the life and this body should be used according to this sloka, karmani eva adhikaraste ma phaleshu kadachan. If we do our activities is prakar se karenge to jo actually 2.47 aata hai, karmani eva adhikaraste, aur atma ke bare mein bhagwan ne 2.11 to 30 mein bataya. To jo baat pehli kahi usko actually realize karne ke liye jo process follow karni hai wo ye nishkam karma yog. तो ये अगर हम करेंगे तो ये सकृत, तो अटेंशन में हम टाइम के बारे में भूलेंगे और खुद भी जरा एनालाइज कर सकते हैं कि 10 महामंत्र आप खुद चैंट कीजिए जरा अच्छे स्पीड में, नॉट टू फास्ट नॉट टू स्लो। अगर बहुत फास्ट करेंगे, जो व्यक्ति के साथ हम प्रेम करते हैं उसका नाम एकदम हम हड़बड़ी में नहीं लेते, फास्ट नहीं लेते, बहुत प्यार से बहुत प्रेम से लेते हैं, तो कुछ कुछ भक्त बोलते हैं कि हमको 10 मंत्र बोलने के लिए 30 सेकंड, 32 सेकंड, यानी एक मंत्र बोलने के लिए 3 सेकंड। लेकिन जरा खुद एनालाइज किए कि 4 से 5 सेकंड एक्चुअली स्विफ्टली, नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो। आप एक्सपेरिमेंट खुद बाद में कर सकते हैं। तो 4 या 4.5 सेकंड भी पकड़ा तो 110 महामंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य पकड़ के, तो 110 × 4.5 मोर देन 7.5 मिनट्स लगने चाहिए फॉर एवरेज साधक। जरा असामान्य व्यक्ति हो तो जरा कम हो सकता है, लेकिन सो एक जस्ट थॉट मेरे मन में आया तो इसलिए शेयर किया। सकृत और ये नामधेयम, ये नाम की क्वालिटी अगर हो तो ही ये बंधम जहाती हो सकता है, नहीं तो हम चाहते हुए भी अच्छी चीजें जीवन में नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।